समझ के जवाब है सुनना, पूछेंगे सवाल गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है सुनना। जगमग तारे, जगमग तारे।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے جگمگ تارے، جی ہاں جگمگ تارے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، یونیک انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ آپ نے بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑے رہنا ہے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اس میں سیگمنٹ شامل کریں۔ اس سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔
سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس یہاں پر کچھ گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کوسچن آنسر کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اس میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام ہے، جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ پیارے بچوں، آج جو کہانی ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہے ایک آدمی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ آدمی کے بارے میں۔ اور وہ آدمی ہے بہت مالدار۔ کیسا ہے؟ مالدار آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے۔ اور اس شخص کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟
عبداللہ۔
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آدمی کیسا ہے؟
عبداللہ۔
عبداللہ بھی ہے، اور دوسری بات کیا ہے اس میں؟
امیر بھی ہے۔
امیر بھی ہے۔ کیا ہے؟ امیر ہے۔ امیر کسے کہتے ہیں؟
جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں۔
جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں۔ تو پیارے بچوں، کہانی ہے عبداللہ کے بارے میں۔ عبداللہ جو ہے یہ ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟
گاؤں۔
اور اس کا بہت بڑا کھیت ہے جہاں پر بہت سارے کسان جو ہیں وہ اس کے پاس کام کرتے ہیں۔ اور عبداللہ پیارے بچوں ایک محنت کرنے والا آدمی ہے، بہت محنتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بزنس جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کھیت میں جو فروٹ لگتے تھے وہ یہ اپنے بازار میں مارکیٹ میں جا کر اس کو سپلائی کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟
سپلائی
کرتا تھا۔ تو اس طرح جو اس کا بزنس تھا نا پیارے بچوں، وہ بہت اچھا چل رہا تھا اور محنتی بھی تھا، اور سب سے بڑی بات کہ آنےسٹ تھا۔ کیسا تھا؟ آنےسٹ پرسن تھا، یعنی ایماندار تھا، بہت ایماندار تھا، اور اپنے بزنس کو ایمانداری کے ساتھ چلایا کرتا تھا۔ تو اس طرح جو عبداللہ تھا پیارے بچوں، اس کا بزنس چل رہا تھا۔ اس کی روٹین کیسی تھی کہ ڈیلی صبح فجر میں اٹھتا، فجر کی نماز پڑھتا اور ڈائریکٹ اپنے کھیت میں جاتا۔ کہاں جاتا؟
کھیت
میں جاتا۔ وہاں پر کسان کام کر رہے ہوتے، ان کو دیکھتا، پھر وہاں سے وہ ڈائریکٹ آفس چلے جاتا۔ تو آفس جاتا، اس طرح ہی اس کی ڈیلی روٹین تھی، اور یہی اس کی وجہ تھی کامیابی کی کہ وہ پنکچوئل بھی بہت تھا اور ہارڈ ورکر تھا، کہ محنت کرتا تھا، صبح صبح جلدی اٹھتا تھا۔ لیکن پیارے بچوں، عبداللہ کی ایک پریشانی تھی۔ امیر تو بہت تھا، بہت مالدار تھا، بہت پیسے والا تھا، محنت کرنے والا بھی تھا، ایماندار بھی تھا، آنےسٹ بھی تھا، لیکن اس کی پریشانی تھی اس کا بچہ شہریار۔ کون تھا؟
شہریار۔
وہ جو شہریار تھا اس کا لڑکا بہت سست تھا، بہت
سست
تھا، محنت نہیں کرتا تھا، کام کچھ کرتا ہی نہیں تھا، بس سستی، اور گھر میں ہی بیٹھا رہتا تھا اپنے ابو کے ساتھ۔ کبھی وہ آفس جاتا ہی نہیں تھا، کبھی بھی آفس نہیں جاتا تھا۔ تو عبداللہ کو उसका जो बच्चा शहरयार था इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती थी, उसके बारे में सोचता था कि इसका क्या बनेगा आखिर, मेहनत नहीं करता है, बहुत सुस्त है, लेजी पर्सन है। तो प्यारे बच्चों हुआ क्या आगे शहरयार के साथ और अब्दुल्ला के साथ, आइए हम सुनते हैं। जो शहरयार था ये सुबह लेट उठता, लेकिन इसके अब्बू सुबह
जल्दी उठते,
इसके अब्बू सुबह जल्दी उठते थे और ये लेट उठता था, ये सुस्ती करता था और ये कभी काम पर भी नहीं जाया करता था। एक दफा अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई
और एक दिन नमाज भी नहीं पढ़ता था वो,
नमाज भी नहीं पढ़ता था। लेकिन एक दफा हुआ क्या प्यारे बच्चों, अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। अब्दुल्ला जो बहुत मेहनत करने वाला आदमी था, बहुत ईमानदार था, उसकी तबीयत क्या हुई,
खराब
हो गई। डॉक्टर ने उसको कहा कि अब आपने काम पर नहीं जाना है, अब आपने
काम
नहीं करना है, अगर आप काम पर गए तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब वो जो अब्दुल्ला था वो तो घर पे बैठ गया। अब सारी जिम्मेदारी आ गई शहरयार पर, किस पर आ गई, शहरयार पर। और शहरयार काम करता नहीं था, उसको आता ही नहीं था कुछ काम करना। अब वो किस तरह काम को आगे बढ़ाए, खैर वो पहुंचा अपनी रूटीन के मुताबिक, सुबह लेट उठता और खेत में जाता, फिर वहां से ऑफिस जाता, इस तरह प्यारे बच्चों चलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस को हुआ नुकसान, क्या हुआ,
लॉस,
बिजनेस को लॉस हो गया और ये लोग नुकसान में जाते रहे। अब वो शहरयार की जो अपनी रूटीन थी देर से उठने की, तो इसने अपनी अम्मी जान को अपने बिजनेस के बारे में बताया कि हमारे बिजनेस में हमें बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने अब्बू से कुछ सीखा नहीं था। प्यारे बच्चों उसके अब्बू जो थे ना अब्दुल्ला, वो जो तबीयत खराब होती है ना वो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, फिर उनका इंतकाल हो जाता है। अब सारी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है,
अब्दुल्ला
शहरयार पर, किस पर, शहरयार पर, क्योंकि घर में कमाने वाले जो थे वो उनका इंतकाल हो गया, अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरयार पर आ जाती है। तो अब वो अपनी रूटीन के मुताबिक जो है ना सारे काम करता है, इस वजह से उसके बिजनेस में भी नुकसान हो रहा होता है। तो अम्मी जान उसको मशवरा देती है, कहती है कि तुम अपने अंकल से बात करो, किससे बात करो,
अंकल
से, उनको इस काम में बड़ा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस वाले आदमी है, बहुत तजर्बेकार हैं, तो वो तुम्हें अच्छा मशवरा देंगे और जैसा वो तुम्हें कहें तुमने वैसा ही करना है। अंकल के पास ये पहुंचता है और अंकल को सारी बातें बताता है कि इस तरह बिजनेस में नुकसान हुआ। अंकल पूछते हैं तुम्हारी डेली रूटीन क्या है, तो बताता है कि मैं लेट उठता हूँ सुबह, फिर मैं ऑफ खेत में जाता और खेत से फिर मैं डायरेक्ट ऑफिस जाता था, ये मेरी रूटीन थी। तो अंकल पहले सोचते हैं, गौर करते हैं कि इसको क्या मशवरा दिया जाए, फिर बाद में अंकल कहते हैं कि तुम जो है मेरे पास एक मशवरा है, एक हल है, एक सॉल्यूशन है जो मैं तुम्हें दूंगा, तुमने उस पर अमल करना है। अंकल कहते हैं कि तुम्हें अपने अब्बू की रूटीन अपनाओ जो तुम्हारे अब्बू करते थे, यानी तुम्हें सुबह फजर में उठना है, फजर के बाद तुम्हें डायरेक्ट खेत में जाना है, खेत में जाना है और फिर वहां से डायरेक्ट ऑफिस चले जाना है। अब अंकल उसको मशवरा देते हैं ये, तो शहरयार कहता है ठीक है जैसे आपने मशवरा दिया मैं वैसे ही करूंगा। अब वो प्यारे बच्चों जल्दी उठता और मेहनत करता, डायरेक्ट खेत चले जाता सुबह सुबह फजर के बाद और वहां से डायरेक्ट ऑफिस चले जाता। आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस को तरक्की मिली, बिजनेस को तरक्की मिली, फायदा होने लगा उनको। तो अब जो है वो बिजनेस जो है प्यारे बच्चों उनका सेट हो गया एक तरह। तो अब शहरयार आता है अपने अंकल के पास और कहता है कि अंकल ये सब आपने जो मशवरा दिया था ना ये उसकी वजह से हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहता है,
शुक्रिया,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंकल कहते हैं कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें
मेरा
कोई कमाल नहीं है, ये सब तो तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। शहरयार ने हैरान होकर कहा कि मेरी मेहनत की वजह से, इसका भाई मेरी मेहनत क्या है। तो अंकल कहते हैं कि देखो तुम पहले देर से खेत जाते थे, और दूसरे कारीगर अपना काम ठीक से नहीं करते थे क्योंकि वो समझते थे कि मालिक नहीं है, मालिक देर से आएंगे तो थोड़े काम में डंडी मार दें, थोड़ा काम छोड़ दें, करे ही नहीं, तो वो ये समझते थे। लेकिन जैसे ही तुमने जल्दी जाना शुरू किया तो अब वो जो कारीगर थे, जो किसान काम करते थे, उन्हें एहसास हुआ कि अब मालिक ने जल्दी आना है और उन्होंने हमें देखना है, तो अब वो अपना काम ठीक से करने लगे। और जैसे ही कारीगर अपना काम ठीक से करने लगे तो तुम्हारे बिजनेस को भी फायदा हुआ और तुम्हारा बिजनेस भी जाकर सेट हो गया। तो अंकल जो है शहरयार को जब ये बताते हैं तो शहरयार कहता है हाँ वाकई में ये जो वाकई में मेहनत तो है ना, मेहनत ये सब कुछ करवाती है। तो प्यारे बच्चों इस कहानी से हमें क्या समझ में आया?
और हमें
जी
जल्दी उठना चाहिए,
जल्दी उठना चाहिए, बेहतरीन। और एक जो मेन इसका लेसन है ना कहानी का, वो है हार्ड वर्किंग। सुस्त इंसान प्यारे बच्चों कभी भी कामयाब नहीं होता, कभी भी कामयाब, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होता है। अच्छा बच्चे कैसे सुस्त होंगे? अपनी पढ़ाई में सुस्ती करेंगे, अपनी पढ़ाई में सुस्ती करेंगे तो नंबर कम आएंगे, नंबर कम आएंगे। लेकिन जो बच्चे हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके नंबर भी अच्छे आते हैं, पोजीशंस लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
कामयाब
हो जाते हैं। तो याद रखिए कि मेहनत ये बहुत जरूरी है, मेहनत
बहुत जरूरी है।
अच्छा बाद बच्चे कहते हैं कि हमारा जो जहन है ना वो कमजोर है। क्या है?
कमजोर
है, हमें चीजें याद नहीं होती हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, मेहनत जो आदमी करता है ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, मेहनत करता रहेगा, भले उसका जहन कितना ही कमजोर हो, आहिस्ता आहिस्ता उसको वो चीजें याद हो जाएंगी, वो चीजें
याद
हो जाएंगी। और कितना ही बड़ा जहीन हो, कितना ही बड़ा अक्लमंद हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अगर वो मेहनत
नहीं
करेगा तो वो पीछे रह जाएगा, वो
पीछे
रह जाएगा। तो इस कहानी का जो मेन मकसद जो समझाने का है प्यारे बच्चों, वो है मेहनत हमें करनी चाहिए हर चीज में, कोई भी फील्ड हो हमारी, हम उसको अच्छे अंदाज में करेंगे, मेहनत करके करेंगे तो इंशाल्लाह हमें उसमें कामयाबी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों ये थी कहानी, इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। और इसका जो लेसन था वो यही था कि हमें मेहनत करनी चाहिए और सुस्ती नहीं अपनानी चाहिए। तो इस आज से आप भी नियत कर लीजिए कि इंशाल्लाह हम भी मेहनत से काम करेंगे और खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई करेंगे और जो भी आप काम करते हैं उसमें मेहनत से करेंगे। तो ये कहानी थी, आइए कुछ हम कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की जाने जाएंगे। जी कॉल चलाइए।
मेरा नाम मीना ध्यान है, मैं तो वही से बात कर रहा हूँ, आप का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मेरी तस्वीर कौन है?
अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन सा शरीफ से बात कर रहे हैं, क्या बात है आपकी? दसवीं कॉल है, कौन सी कॉल है? दसवीं कॉल है, दसवीं कॉल कहा ना इन्होंने। जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह कॉल करते रहे, जजाक अल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए।
मेरा नाम गुलाम रसूल है, मुझे जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है।
बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल दीजिए।
नाम सलमा तारिया है, मुझे जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है, आज मैं आपको पोयम सुनाऊंगी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखूं, अपने रब की पाकी बोलूं, अपने रब की पाकी बोलूं, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह।
आमीन आमीन आमीन। तो अब बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है, सेगमेंट का नाम तो सिलसिले का नाम है जगमग तारे, सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब है सेगमेंट क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल जवाब का सेगमेंट होने वाला है और यहाँ पर मौजूद बच्चे इनसे हम इंशाल्लाह सवाल जवाब करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? चले। अच्छा सवाल का जब जवाब आपको आता हो ना तो आपने हाथ उठाना है, हैंड रेस करना है, जवाब मुझसे नहीं बताना, ठीक है? पहला क्वेश्चन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या है? जी
बीबी उम्मे अमन रजी अल्लाह तआला अन्हा।
बीबी
बीबी अमन रजी अल्लाह तआला अन्हा।
सही जवाब है इनका, आप बताए।
हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अनो
अन
अनो
अन, हाँ क्या बोलेंगे?
हाँ।
तो प्यारे बच्चों इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया, जी हाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम हजरत सैयदतुना बीबी आमिना रजी अल्लाह ताला अनहा है, ठीक है प्यारे बच्चों? अब है अगला क्वेश्चन, अब आप ये बताएं, जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बताएं वो कौन सा फ्रूट है, वो कौन सा फ्रूट है जिसमें बादाम निकलता है?
लबिक।
सबको आता है?
लबिक।
आप बताएं, चले बताएं।
खुबानी।
क्या है?
खुबानी।
खुबानी के अंदर से क्या निकलता है?
बादाम।
बादाम निकलता है, दुरुस्त जवाब। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर ऐसा है जिसके दो दांत बहुत लंबे लंबे होते हैं?
लबाई, लबाई, लबाई।
आप बताएं, बताएं आप।
हाथी।
चले आप दोनों ने बता दिया, दोनों का जवाब
दुरुस्त है।
हाथी के दांत देखे ना आपने, कितने बड़े बड़े होते हैं,
बड़े बड़े
बड़े बड़े निकले होते हैं। तो दो दांत जो है हाथी के, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों आप लोग ये बताएं कि दिन में सबसे आखिर में, अच्छा पहले ये बताएं कि हम दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? दिन में कितनी नमाजें फर्ज नमाजें वो हम पढ़ते हैं, आप बताएं?
चार।
एक पांच है, कितनी है?
पांच
है। चले एक एक करके बताएं, सबसे पहले कौन सी नमाज होती है?
फजर।
कौन सी नमाज होती है?
फजर।
जी हाँ। दूसरी नमाज?
ज़ुहर।
तीसरी नमाज?
असर।
असर क्या है?
असर।
असर नहीं, असर क्या है?
असर।
और चौथी नमाज? चौथी नमाज जल्दी बताएं, जिसमें अजान होते ही हम नमाज पढ़ लेते
हैं,
कौन सी है? जी हाँ, मगरिब। और पांचवी नमाज?
ईशा।
ईशा की नमाज। तो अब आपने सवाल गौर से सुनना है, अभी तो सवाल हुआ ही नहीं है। अब सवाल यह है कि दिन में सबसे आखिर में हम कौन सी फर्ज नमाज पढ़ते हैं? जी
ईशा।
कौन सी?
ईशा।
जी हाँ, ईशा की नमाज हम दिन में सबसे आखिर में पढ़ते हैं। और इस तरह आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। और इसी तरह प्यारे बच्चों हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम था सवाल जवाब, ये कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने। जी हाँ, और इसका नाम है, क्या नाम है?
अच्छी बात है।
अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अगले सेगमेंट का नाम है दुआ।
आइए बच्चों, आज हम सीखेंगे कि जब मुर्गे की बांग सुने तो क्या पढ़े।
आओ दुआ सीखे, आओ दुआ सीखे,
नबी के फरमान का ये मक़बूल है, नबी के फरमान का ये मक़बूल है। जब मुर्गे की बांग सुने तब से फजल का सवाल करो, जब मुर्गे की बांग सुने तब से फजल का सवाल करो, क्योंकि ये फरिश्तों को देखता है।
फजल का सवाल कैसे करें?
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक।
तो प्यारे बच्चों ये आपने दुआ देखी, कौन सी दुआ थी, कौन बताएगा? बहुत मुश्किल लग रहा था। मुर्गे वो लफ्ज आपको पढ़ना नहीं आ रहा होगा। मुर्गे
को देखने से पहले,
देखने से पहले ही
नहीं।
बांग का लफ्ज था ना, बांग का, ये बांग क्या होती है भाई, ये कौन बताएगा?
बांग क्या होती है?
मुर्गा देखा उस आपने अपनी आवाज में वो क्या करता है, इस तरह करता है ना, तो ये इसको बांग कहते हैं। क्या कहते हैं?
बांग।
तो जब दुआ कौन सी पढ़नी चाहिए, हमने दुआ कौन सी सुनी, कौन सुनाएगा ये? अल्लाहुम्मा इन्नी
अस्अलुका
मिन फ़ज़लिक,
अल्लाहुम्मा
इन्नी
अस्अलुका
मिन फ़ज़लिक। अब याद हुई, थोड़ी थोड़ी करके सुना दे। जी
अल्लाहुम्मा,
ठीक है आगे, वरना मदनी चैनल के नाज़रीन जो बच्चे बैठे हैं वो भी सुना सकते हैं। फिर आप सुनाएंगे, चले आप सुना, ठीक है? इन्नी
इन्नी अस्अलुका,
सही है? आप सब अपने अपने हिस्से की बात हिस्से की दुआ सुना दें आगे
चले।
आपने शुरू करी, उन्होंने बीच का मुकम्मल किया और आखिर में इन्होंने मुकम्मल कर दी। आइए हम अपने अगले सेगमेंट की जानी बढ़ते हैं, इसका नाम है
अच्छी बातें।
जी हाँ, अगले सेगमेंट का नाम है अच्छी बातें। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है अच्छी बातें। क्या सेगमेंट है?
अच्छी बात।
इसमें हम आपको बताते हैं अच्छी अच्छी बातें और क्या हमें काम करने चाहिए और क्या हमें काम नहीं करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो हम आपको बताएं कि जो काम हमें करने चाहिए तो कोशिश क्या करें, हम उस पर अमल करें, उस पर अमल करें तो हमें सवाब मिलेगा, और जो जिस काम से हमें मना किया जाए तो उस काम को हमें
नहीं
करना चाहिए। अपने सेगमेंट को बढ़ाते हैं आगे और शुरू करते हैं, इससे पहले हम कुछ कॉल्स अपने सिलसिले में शामिल कर लेते हैं। जी कॉल चलाइए।
मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अशरफ है, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक नाच सुनाऊंगा। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद, दौलत जो चाहे दोनों जहाँ की कर लो वजीफा नाम है मोहम्मद। जैसे कर लो किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल।
आमीन आमीन आमीन, जज़ाकअल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल दीजिए।
मेरा नाम नुकसाना रो मोहम्मद है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अपना मकसद मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है।
आमीन आमीन आमीन, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने हमें कॉल की। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अच्छी बात, और अब हम शुरू करते हैं अच्छी अच्छी बातें। प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो अच्छी बात है वो ये है कि हमें किसी को तकलीफ
नहीं
देनी चाहिए। जी हाँ, हमें किसी को भी, प्यारे बच्चों, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत
बुरी बात है।
जो लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं ना, वो फिर अच्छे बच्चे नहीं होते, अच्छे बच्चे
नहीं
होते हैं। अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चों, याद रखिए, कभी भी किसी को तकलीफ
नहीं
पहुंचाते। तो याद से नियत कर लें हम कि हम कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम कभी भी किसी को तकलीफ
नहीं
पहुंचाएंगे, और अच्छे अच्छे काम करेंगे और सबको खुशी देंगे। क्या करेंगे? अच्छी बातें करेंगे जिससे लोग खुश हो, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सवाब के काम करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे लोग जो है वो खुश होंगे, और तकलीफ हम किसी को तंग नहीं करेंगे। तकलीफ से क्या मुराद है प्यारे बच्चों? तकलीफ किस तरह देते हैं ये कौन बताएगा?
किसी को मारना।
ये तो घर में भी हम देखें ना, अपने घर में होते हैं हम, कितनी सारी ऐसे काम करते हैं जिससे घर वालों को तकलीफ हो रही होती है। बात समझ आ रही है आपको? जैसे घर वालों ने कहा ये काम नहीं करो, हम वो काम करने लग गए, तकलीफ होगी। हमने कोई ऐसा काम कर दिया कि घर वाले बहुत परेशान हो गए उस काम से, इससे तकलीफ हो गई। अम्मी मना करती है किचन में चूल्हे के करीब ना जाएं, जाए चले जाते हैं, तो इससे तकलीफ होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे काम हम देखें ना, इतने सारे हम ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती है, घर वालों को खुसूसन तकलीफ हो जाती है। तो इस तरह के काम हमें नहीं करने हैं, हमें लोगों को तकलीफ
नहीं
देनी चाहिए। तो ये थी प्यारे बच्चों पहली अच्छी बात। अब बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। प्यारे बच्चों, फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए?
फालतू
बातें क्या होती
हैं?
अब ये फालतू बातें क्या होती हैं? ऐसे ही कोई, ऐसे ही ना कि जैसे कोई मकसद नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, दिल चाह रहा है कि मैं कुछ बोलूं, बस मैं कुछ बोलूं, तो ऐसे ही शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, फालतू बातें नहीं, कि बिला जरूरत जो बात करते हैं ना हम, उसमें हम झूठ में पड़ने में, लोगों की कीमतें करने में, और दूसरी जो चीजें हैं ना जो जबान से होती हैं बुरी चीजें, उसमें जाने का हमारा बहुत ज्यादा इम्कान होता है। यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि हम गलत कामों में पड़ जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, फालतू बातों में हम किसी की कीमत कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं। यानी कि जो बेमानी टॉकिंग होती है, बिला जरूरत टॉकिंग होती है ना, उसमें ये नुकसान होता है कि कोई किसी की दिल दुखा रहा होता है, कोई किसी की कीमत कर देता है, कोई किसी की किसी से झूठ बोल देता है। तो इस तरह हमने नियत तो नहीं होती झूठ बोलने की, लेकिन हम पढ़ जाते हैं, हम पड़ जाते हैं। तो ये गलत बातें हैं, ये सारी गलत बातें हैं। तो इस तरह हमें फालतू बातें प्यारे बच्चों नहीं करनी चाहिए। अपनी जबान को ना जिसको पहले ही बताया था कि अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, और नात पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें। आपको अच्छी बात पता है तो वो जरूर बताएं, अच्छी बात मालूम है तो ये जरूर बताएं आप दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को, कि आपको पता है कि मैंने आज किड्स मदनी चैनल से ये सीखा कि सबसे पहले नबी जो इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए वो हजरत आदम अलैहि सलाम है। आपको पता है मैंने किड्स मदनी चैनल से ये सीखा, मैंने ये सीखा। इस तरह की प्यारे बच्चों आप बातें करें घर में, तो ये अच्छी बातें हैं, ये जरूर फालतू बातें नहीं होंगी। इसमें आप गुनाहों में भी नहीं पड़ेंगे, झूठ में भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह की बातें प्यारे बच्चों हमें करनी चाहिए, और हमेशा याद रखें कि अपनी जबान को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। बिला जरूरत अगर आप अपनी जबान को इस्तेमाल करेंगे तो आप गलत कामों में पड़ सकते हैं। तो ये थी दूसरी अच्छी बात। अब हम बढ़ने जा रहे हैं तीसरी बात की तरफ, ठीक है? वो बहुत अच्छी बात है, और वो ये है कि हमें दूसरों से मिलते वक्त मुस्कुराना चाहिए। क्या करना चाहिए?
मुस्कुराना।
कैसे मुस्कुराएंगे? दिखाएं बच्चों को, दिखाएं, मुस्कुराएं कैसे? ऐसे। हाँ, कभी भी किसी से मिले ना तो मुस्कुरा कर मिले, किसी से मिले तो मुस्कुरा कर मिले, ऐसे नहीं। हाँ, सहेलियों से, घर वालों में भी जब आप घर में एंटर हुए आपने सलाम किया तो मुस्कुराएं, ऐसे नहीं कि अपना मुंह बना हुआ है तो इसमें घर वालों को भी टेंशन हो जाती है कि भाई इसका मुंह क्यों बना हुआ है, परेशान है क्या। तो इस तरह की अपनी तबीयत नहीं रखनी है प्यारे बच्चों, अपने मिजाज को अच्छा करना है, अपनी तबीयत को अच्छा करना है। और जब भी आप किसी के साथ मुस्कुरा के मिलेंगे ना तो वो भी मुस्कुराने लग जाएगा, वो भी मुस्कुराने लग जाएगा, जैसे आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह कभी भी आप किसी के पास गए, अपनी सहेलियों के पास गए, अपने बहन भाइयों के पास गए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने हाथ मिलाया, आप मुस्कुरा रहे, अब वो खुद ब खुद मुस्कुराएगा, वो खुद ब खुद मुस्कुराएगा। तो इस तरह आप मिलेंगे तो ये अच्छी बात है। क्या है ये?
अच्छी बात।
जी हाँ, मुस्कुरा कर मिलना अच्छी बात है। इसी तरह प्यारे बच्चों अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए?
अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए।
अपनी चीजों को ऐसी जगह ना रखें जहां से आपको लगे कि ये गुम हो जाएंगी, तो फिर इसमें फिर आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो गुम हो जाएगी, जिसने लिए वो तो उसने गलत काम किया है, लेकिन हमें भी तो अपनी चीज की हिफाजत करनी है ना, हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनना है। क्या बनना है? हमें रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनना है कि हम अपनी चीज की हिफाजत खुद करने वाले बने। हम ये देखें कि हमारी चीज कहाँ पर महफूज है, कहाँ रखूंगा मैं। जैसे पेंसिल को आपने बाहर रख दिया, अब अगर आप ज्योमेट्री में ज्योमेट्री को बंद करके रखते तो पेंसिल गुम नहीं होती, आपने बाहर रख दिया, अब आपको मिल ही नहीं रही वो कहाँ है। तो इसमें ये आपकी गलती है। ये क्या है?
आपकी
गलती है। आपको चाहिए था कि आप अपनी चीज को जहां उसको रखना चाहिए वहां रखते। तो इस तरह अपनी चीजों की हिफाजत करें, क्योंकि जब चीज आपकी गुम हो जाएगी ना तो आपको बड़ी परेशानी होगी, बाद में आपको परेशानी होती है, वक्त पर वो चीज मिलती नहीं है तो आपको फिर परेशानी होती है। तो प्यारे बच्चों हमें चाहिए कि हम अपनी चीजों की हिफाजत करें। आखिरी अच्छी बात, और ये तो सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। जी हाँ, कौन बताएगा ये? आप बताएं। चलो,
कुरान पाक पढ़ना चाहिए।
हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों कुरान मजीद तो ये वो किताब है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। इसको देखना सवाब, इसको
देखना
सवाब, इसको हाथ लगाना भी सवाब, इसको सुनना सवाब, इसका पढ़ना सवाब, इसका सुनना सवाब, इसका पढ़ाना सवाब, और इसका सुनाना सवाब। कितने सवाब हो गए? एक तो हम पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, दूसरे को पढ़ा रहे तो सवाब मिलेगा, सुन रहे हैं तो भी सवाब मिलेगा, सुना रहे हैं तो भी सवाब मिलेगा, और देख रहे हैं, छू रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं कुरान पाक को, बावजू होकर हाथ लगा रहे तो भी हमें सवाब मिलेगा। तो कितनी प्यारी किताब है प्यारे बच्चों, ये इतने सारे सवाब है। इसी तरह प्यारे बच्चों को बताऊं कि हदीस पाक में आता है कि कुरान पाक के एक हर्फ के बदले पता आपको कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां। कितनी?
10
नेकियां मिलती है। कितनी नेकियां मिलती है? 10। अब जैसे अलिफ लाम और मीम, ये कितने हर्फ हो गए?
अलिफ
कितने हर्फ हो गए? तो कितनी नेकियां हो गई?
3।
एक के बदले कितनी थी?
10।
तो 3 के बदले कितनी हो गई?
क्या?
3 के बदले 30 नेकियां हो गई। कितनी हो गई?
30।
تو پیارے بچوں قرآن مجید اتنی پیاری کتاب ہے تو ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ بھی ہم پڑھتے ہیں عموماً، سورہ اخلاص کی تلاوت بچوں کو آتی ہے تو سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، آیت الکرسی یاد کریں یہ بھی قرآن پاک کا حصہ، قرآن پاک کی نیت سے اس کو پڑھیں تو اس طرح پیارے بچوں ہمیں ثواب ملے گا۔ اور تلاوت قرآن مجید جس گھر میں ہوتی ہے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہے، تو یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت پیارے بچوں ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو آج سے ہی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پیارے بچوں اچھی
بات۔
اب ہم نے آج اس میں اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائی، اور وہ کام آپ کو بتایا کہ جو ہمیں کرنے چاہیے، اور وہ کام بھی بتایا کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تو ہم نے آپ کو یہ بتایا، اسی طرح قرآن مجید پڑھنا چاہیے یہ کام کرنے والے ہیں۔ تو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور مسکرا کر لوگوں سے ملیں، دوسروں سے ملیں، بہن بھائیوں سے ملیں، اپنی سہیلیوں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں پھر اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی
میرا نام دعا ہے، مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے، میں آپ کو نعت سناؤں گی۔
سنائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو انہوں نے ہمیں نعت سنائی، کون سی نعت؟ آنکھوں کا تارا، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئی نیکسٹ کال دیجیے۔
میرا نام مکی اختر ہے، مجھے جگمگ تارے سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے،
بہت بہت شکریہ۔
میں آپ کو یہ نعت سناؤں گا۔
نیکسٹ کال دیجیے۔
میرا نام امیمہ توریہ ہے، میں اورنگ راج سے بات کر رہی ہوں، مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے، کڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیر۔
آمین آمین آمین، بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے کالز کی۔ تو پیارے بچوں اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام کون بتائے گا؟ جی بتائیں۔ کیا ہے؟ کوئز ہو گیا نا، سوال جواب
ہو گیا۔
تو پیارے بچوں اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ہیلدی فوڈ۔ تو پیارے بچوں ہیلدی فوڈ کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں، اور ہم سنتے ہیں ان میں اس سیگمنٹ میں ایک ایسے فوڈ کے بارے میں جس کے ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اور آج ہم سننے جا رہے ہیں گرمیوں کا ایک فروٹ ہے۔ کس کا ہے؟ گرمیوں کے موسم کا، گرمیوں میں آتا ہے وہ، اور وہ بہت گرمیوں کے لیے فائدے مند ہے اور لوگ بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں گرمیوں میں نا۔ تو اس کا نام ہے خربوزہ۔ کیا ہے؟ جی ہاں، خربوزے کے بارے میں آج ہم سنیں گے کہ گرمیوں کا موسم آتے ہی سورج اپنی گرمی کا احساس بھی دلاتا ہے، گرمی بڑھتی ہے تو لوگوں کا جو دھیان ہے اور رجحان یہ خربوزے کی طرف جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خربوزہ پیارے بچوں یہ انسانی باڈی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جو خاص آنکھوں کی روشنی کے لیے بہترین ہے، اور عمر کے ساتھ ہونے والے وزن پرابلم کو بھی خربوزہ دور کرتا ہے۔ اور خربوزہ جو ہے نا پیارے بچوں یہ ایسا فوڈ ہے جو آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ کیا؟ کھانا کھانے کو ڈائجسٹ کر دیتا ہے آسانی سے، تو یہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے خاص طور پر کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ ایک بہت ہی بھرپور فروٹ ہے، ایک سرونگ آپ کی وٹامن سی اور اے روز کی ضرورت کا آدھا حصہ خربوزے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن اے آنکھوں کے विजन को बेहतर करने के साथ साथ सूजन को भी कम करते हैं। जी हाँ, सूजन को भी कम करते हैं। खरबूजा हमारी स्किन में मौजूद टिश्यूज को मजबूत रखने और खराब होने से रोकता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह इसमें मौजूद विटामिन सी हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस के अलावा जिस्म के अंदर रह जाने वाले टॉक्सिन्स को भी खत्म करते हैं। खरबूजे में मौजूद पानी की वजह से ये गर्मियों में ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल है। किसकी वजह से? पानी की वजह से। किसकी वजह से?
पानी।
जी हाँ, खरबूजे में पानी होता है। क्या होता है?
पानी
नजर आ रहा होता है?
पानी।
पानी नजर आ रहा होता है खरबूजे में? खरबूजे को काटते पानी नजर आता है? नजर आता आपको पानी? नजर आता है? पानी नजर नहीं आता, लेकिन ये इसका एक फायदा है। इसका एक फायदा है कि इसके अंदर पानी की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को गर्मियों में ये फायदा पहुंचाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि इसका जायकेदार फ्रूट में 90% पानी मौजूद है। कितनी परसेंट?
90
यानी कि 100% में से 90% इसमें पानी मौजूद होता है। तो कितना बेहतरीन ये फ्रूट है और गर्मियों के लिहाज से कितना फायदेमंद ये फ्रूट है। इसमें शामिल विटामिन बालों को सेहतमंद रखते हैं। जी हाँ, और मॉइस्चराइजर रखता है। खरबूजे में पोटेशियम होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स को नरम करने में मदद देता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहता है। इसमें डाइट्री फाइबर की अच्छी मिकदार होती है, जिससे आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आपको भूख भी कम लगती है। आपको
भूख
भी कम लगती है। तो प्यारे बच्चों, खरबूजे के इतने सारे फवाइद सुने हमने, तो ये अल्लाह पाक की एक नेमत है। क्या है? अल्लाह पाक की। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी नेमत खरबूजे की सूरत में भी है। और अल्लाह पाक की इनामात के तो क्या ही कहना है, हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। वाकईतन देखा जाए तो सारे ही फ्रूट अल्लाह पाक की इनामात हैं। तो कोशिश की जाए, ये जो सेगमेंट है प्यारे बच्चों हेल्दी फूड, ये इसीलिए लाया जाता है ताकि आपको अच्छे अच्छे फूड के बारे में बताया जाए, जिससे आपको क्या हो?
फायदा हो।
फायदा तो हो जाएगा, और क्या हो? इसके फवाइद इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपका जहन बने कि मैं भी ये चीज खाऊं, मैं भी ये चीज खाऊं। जी हाँ, फायदेमंद चीज प्यारे बच्चों हमें खानी चाहिए। हम बहुत सारी चीजें खा रहे होते हैं, लेकिन जो चीज हमें फायदा देती है हम वो चीज नहीं खाते। फिर हमारी ग्रोथ भी अच्छी तरह नहीं होती है, हम कमजोर रह जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छे अच्छे फूड जो घर में आते हैं वो सब खाने चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना तो भूलना ही नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना भूलना ही नहीं है हर हाल में। आप जो खाने के बाद तो दुआ है शुक्र अदा करने की, लेकिन हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आपको जो अल्लाह पाक की तरफ से नेमत मिले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे तो नेमतों में मजीद इजाफा होगा। तो ये था प्यारे बच्चों हेल्दी फूड। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसके फवाइद सुनकर खरबूजे के, और आपका जहन भी बना होगा कि मैं भी खाऊंगा। तो कोशिश किया करें कि अच्छे अच्छे फूड खाया करें। इस तरह हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पोयम।
शेर की खाल में एक गधा, शेर की खाल में एक गधा, एक गधे ने जंगल में पड़ी शेर की खाल देखी, एक गधे ने जंगल में पड़ी शेर की खाल देख, सोचा इसको पहनूंगा तो सब मुझसे डरेंगे, जो चाहूंगा करूंगा। एक गधा शेर की खाल पहनकर जंगल में घूमने लगा, जानवर उसे दूर से देखकर भाग जाते, लोमड़ी भी उसके धोखे में आ गई, गधा बहुत ही खुश हुआ, सोचा सबको बोलूं बनाया, अरे मजा आ गया भाई, मुझे ऐसे ही बेवकूफ समझते हैं,
पता चलेगा
एक गधा, गधा खुशी के मारे चुप ना रह सका और जोर
नहीं हो सकता।
तो प्यारे बच्चों देखा आपने, नज़म सुनी एक और इस बहुत अच्छी नज़म थी, लेकिन इसमें हमें समझाया ये गया कि गधा वाकई में गधा ही होता है, गधा वाकई में गधा होता है और हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसने जो करना था किया तो सही, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया, धोखा दे रहा था। तो इस तरह के काम अच्छे नहीं होते हैं। ये एक समझाने के लिए पोयम बनाई गई, नज़म बनाई गई, और बहुत अच्छा इसमें लेसन दिया गया कि कभी भी किसी के साथ हम ऐसा मजाक ना करें कि जिससे धोखा हो, जिसमें झूठ वाले मजाक तो हमें करने ही नहीं चाहिए। बाद बच्चे झूठ बोलकर लोगों को हंसाते हैं और समझते हैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो ये अच्छा काम नहीं है प्यारे बच्चों। झूठ बोलना कोई अच्छा काम थोड़ी ना है। अल्लाह पाक झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं फरमाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है। तो इस तरह के काम जो है प्यारे बच्चों हमें नहीं करने चाहिए, और झूठ तो वाकईतन बोलना ही नहीं चाहिए, और झूठ में भले हंसाएं ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। हंसाना है तो अच्छी बात सुनाएं, हंसाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा फरमान सुनाएं जिसमें जन्नत की बिशारत हो, तो इससे लोग मुस्कुराएंगे, खुशी होगी कि जन्नत में जाना है तो ऐसे अमल करने हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह की बातें हमें करनी चाहिए। आइए कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल चलाइए।
मेरा नाम हानिया असम है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज मैं नारे गाऊंगी, साहब ये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी
जन्नती जन्नती,
फातिमा और अली जन्नती जन्नती, चार यारा नैनब जन्नती जन्नती। मुझे जगमत आए बहुत अच्छा लगता है।
जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नारे प्यारे बच्चों तरतीब बार लगाया करें और उसकी कोशिश किया करें, इसको याद कर लें। नेक्स्ट कॉल दीजिए।
मेरा नाम सिमरा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक नाम सुनाऊंगी, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसने के नाना, ए हसने।
हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल लीजिए।
नाम अहमद रजा अत्तारी है, मैं बैरिया टाउन लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज हमें ये कहानी से ये सबक मिला कि हमें मेहनत करनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सबक मिला, हमें मेहनत करनी चाहिए। जज़ाकअल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मुकद्दस मकाम। और आज हम मुकद्दस मकाम में जिस मुकद्दस मकाम का तज़किरा करने जा रहे हैं वो है मकाम इब्राहिम। जी हाँ प्यारे बच्चों, मकाम इब्राहिम बहुत ही बहुत मुकद्दस मकाम है, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी आया है। तो आइए इसके बारे में हम कुछ सुनते हैं। प्यारे बच्चों आज हम जिस मुकद्दस मकाम के बारे में सुनने वाले हैं वो एक पत्थर है जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। जी हाँ, मकाम इब्राहिम ये एक पत्थर है। ये पत्थर काबा शरीफ से थोड़ा सा दूर रखा है। यही वे वही पत्थर है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम काबा शरीफ की तामीर फरमा रहे थे, तो जब दीवारें आपकी हाइट से ऊंची हो गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस सलाम से फरमाया कोई पत्थर लाओ ताकि उस पर खड़े होकर दीवार बनाए। हजरत इस्माइल अलैहिस सलाम पत्थर की तलाश में एक पहाड़ पर पहुंच गए। रास्ते में हजरत जिब्राइल अलैहिस सलाम मिले और कहा कि आइए मैं आपको पत्थर बताऊं जो आदम अलैहिस सलाम के साथ दुनिया में आया और इसे इदरीस अलैहिस सलाम ने इस पहाड़ में दफन कर दिया। इस जगह छोटे बड़े दो पत्थर हैं, छोटे को तो काबे की दीवार में दरवाजे के करीब लगा दो कि हर तवाफ करने वाला उसको चूमे, और बड़े पर इब्राहिम अलैहिस सलाम खड़े होकर इमारत बनाए। हजरत इस्माइल अलैहिस सलाम प्यारे बच्चों वो दोनों पत्थर ले आए और छोटे पत्थर को काबा शरीफ की दीवार में लगा दिया, और वो छोटा पत्थर कौन सा पत्थर है आप समझ गए होंगे कि वो हजरे अस्वद है, और बड़े पर खड़े होकर तामीर का काम किया गया। यानी इमारत जितनी ऊंची होती जाती थी ये पत्थर भी उतना ऊंचा होता चला जाता था, यहां तक कि आप अलैहिस सलाम तामीर से कंस्ट्रक्शन से फारिग हो गए। इस पत्थर की प्यारे बच्चों एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम काबा शरीफ की तामीर के लिए इस पर खड़े हुए तो ये पत्थर मोम की तरह सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया, और आप अलैहिस सलाम के मुबारक कदमों का इस पत्थर पर निशान पड़ गया डाक। आपके कदमों के मुबारक निशान की वजह से इसकी वैल्यू और ज्यादा हो गई। जी हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम के निशान मुबारक निशान की वजह से इस पत्थर की वैल्यू कितनी बढ़ गई और इसको इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दो जगह इसका जिक्र इरशाद फरमाया। एक जगह फरमाया काबा मुकर्रमा में अल्लाह पाक की बहुत सारी निशानियां हैं और इन निशानियों में से एक निशानी मकाम इब्राहिम है, और दूसरी जगह اس پتھر کی ویلیو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ پیارے بچوں آئیے اس پتھر کے ہم کچھ فیکٹس سنتے ہیں۔ 4000 سال کے لمبے ٹائم پیریڈ سے اس مبارک پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان ہیں۔ سبحان اللہ، 4000 سال، کتنے ہزار سال؟ 4000 سال یہ پتھر سالوں سے کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے، اس پر ہزاروں بارشیں بھی ہوئیں، کئی کئی بارشوں میں پہاڑوں کا پانی بھی کعبہ شریف میں آ گیا، یہ پتھر بارش کے پانی میں ڈوبا رہا، لیکن کروڑوں لوگوں نے پیارے بچوں اس کو چوما بھی، ہاتھ بھی لگایا، لیکن اس پتھر کے جو نشان مبارک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ابھی تک قدموں کے نشان دور نہیں ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت مقام ابراہیم جو ہے پیارے بچوں ایک خوبصورت مقام ہے، اور یقین جانیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر آیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس جگہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ مقدس مقام کمپلیٹ ہوا اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اس سے بہت ساری انفارمیشن ہمیں معلوم ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ سیٹرڈے یہ پروگرام اسی ٹائمنگ پہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس، آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، کڈز مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ دیکھتے رہیں۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے آفیشیل کڈز مدنی چینل کے نام سے، وہاں جائیں اس کو سبسکرائب کریں، اور وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، کارٹونز ملیں گے غلام رسول کے، وہ دیکھیں آپ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو، اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں، مسٹیک ہوئی ہوں، انہیں معاف فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سوچ سمجھ کے جواب ہے سننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا۔ سوچ سمجھ کے جواب ہے سننا، جگمگ 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 جگمگ۔